हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता वार्तालाप कर रहे थे, अपनी चिंता को व्यक्त कर रहे थे, और ब्रह्मा जी उनको फिर विस्तार रूप में समझाते हैं कि मैंने उनको कैसे वरदान दिए हैं, इसमें कई त्रुटियां हैं और वही उनके मृत्यु का कारण भी बनेंगे। तो ब्रह्मा जी से इन तथाकथित वरदानों का विस्तार रूप में वर्णन सुनने के बाद देवता थोड़े से शांत हो गए, लेकिन जो कष्ट उनको रावण के दरबार में प्राप्त हो रहा था, नवग्रहों को प्राप्त हो रहा था, किन्नरों को प्राप्त हो रहा था, यक्षों को प्राप्त हो रहा था, सूर्य वायु वरुण आदि देवताओं को प्राप्त हो रहा था, उसके कारण उनके मन में विचार आया कि हमें भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर बैठे हुए वहां प्रकट हो जाते हैं, शंख चक्र और गदा धारण करते हुए और एक हाथ में कमल न लेते हुए वहां प्रकट होते हैं और कमल के हाथ ऊपर करके वरदान देते हैं कि आपको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जान ही रहे हैं आप दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में आहुति स्वीकार करने के लिए आए हो, इसी यज्ञ से मैं प्रकट हो जाऊंगा, आप निश्चिंत हो जाओ। इसमें सिद्धांत की बात ऐसी है कि भगवान के निर्माण में सर्वोच्च लोक गौलोक वृंदावन है, उसके अधिपति श्री कृष्ण भगवान है, और श्री कृष्ण भगवान अपने प्रथम विस्तार में बलराम जी के रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें लीला अवतार कहा गया है, और बलराम जी ये श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित प्रथम विस्तार हैं, प्रथम विष्णु तत्व हैं, और बलराम जी के माध्यम से फिर चतुर्व्यूह का निर्माण होता है। ये चतुर्व्यूह का है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये चार विष्णु तत्व बलराम के द्वारा प्रकट होते हैं, और ये चारों तत्व राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए। वासुदेव तत्व से श्री रामचंद्र प्रभु अवतरित हुए, संकर्षण तत्व से लक्ष्मण जी अवतरित हुए, और भरत शत्रुघ्न ये अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के द्वारा प्रकट हो गए, उन तत्वों से प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, जैसे सनत कुमार ने सुमंत्र आर्य सुमंत्र को कहा था कि जब श्रृंगी ऋषि के माध्यम से राजा दशरथ पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करेंगे तो उन्हें चार तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जाएंगे, यही बात यहां पर हमें मिलती है कि भगवान भी बता रहे हैं देवताओं को कि मैं आ रहा हूं। और ऐसा कहकर तुरंत भगवान अंतर्धान हो गए, ब्रह्मा जी वहीं थे, उनका वार्तालाप चल रहा था देवताओं से। तो भगवान के द्वारा आश्वस्त होने के पश्चात फिर ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को आदेश दिया, आप सभी लोग वानर बनो, क्योंकि वानर के द्वारा अभय नहीं मांगा है उसने, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत आदेश दिए, हे सूर्यदेव आप सुग्रीव बनो, हे इंद्रदेव आप वाली बनो, कुबेर आप नील बनो, बृहस्पति गुरुदेव आप तरु बनो, वरुण देव आप सुषेण वैद्य बनो, वायुदेव आप हनुमान के रूप में प्रकट हो जाओ, और मैं ब्रह्मा स्वयं जांबुवान के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। और जैसे ब्रह्मा सभी देवताओं के नेता है, जब सब देवता नीचे असंख्य वानर कुल में जन्म लिए तो जांबुवान के रूप में ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के रूप में जांबुवान जी इन सबके नेता बने। वयोवृद्ध सबसे अनुभवी, सबसे ज्ञानी और सबसे कुशाग्र बुद्धि वाले जांबुवान भालू के रूप में प्रकट हुए। बहुत ही आनंद की बात है कि भालू, बानर, बंदर जैसे योनियों में देवताओं ने जन्म लिया है। बड़ी विचित्र बात है ये कि जो श्रेष्ठत्व, श्रेष्ठ सुगंध वाला शरीर लेकर जीते हैं, जिनके शरीर में मलमूत्र का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके लोक में केवल सुगंध चलता है, जिनके लोकों में केवल फूल खिलते हैं मुरझाते नहीं हैं, जिनके लोकों में अन्न और पेय का स्वाद इतना श्रेष्ठ होता है कि हम भगवान तक को भूल जाते हैं, इतना ऐश्वर्य है उनके राज्य में, उन पर भी संकट आता है। भगवान के भक्त होने पर हम संकट से मुक्त होंगे, ये कोई प्रॉमिस किसी भी शास्त्र में नहीं दिया है। जब तक हम भौतिक दुनिया में जी रहे हैं तब तक दुख आते ही रहेंगे, बहुत ऐश्वर्य होगा और कहीं हम आनंद मनाने के लिए चले जाएंगे और गिर जाएंगे और हमारे अस्थि भंग होगा, प्लास्टर लगेगा, कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी का अपघात हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। कुछ अच्छा कार्य करने जाएंगे तो किसी की मृत्यु हो जाएगी। लड़की का विवाह करने चले गए तो वहां झगड़ा हो जाएगा, या विवाह के मुहूर्त के समय वर्षा हो जाएगी, विवाह में कोई आ नहीं पाएगा। तात्पर्य यह है कि 14 भुवन, ब्रह्मा लोक से लेकर पाताल लोक तक, 7 स्वर्गलोक, 1 पृथ्वीलोक और 6 नीचे के लोक, इन 14 भुवन में सब जगह पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि विराजमान है। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति नो अर्जुना, जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति हर लोक में, ब्रह्मा लोक से लेकर जहां पर लाखों लाखों सालों का जीवन है, फिर पृथ्वी पर आएंगे कलयुग में 100 साल का जीवन है, पाताल लोक में और बहुत सारे लाखों साल का जीवन है। भौतिक जगत में जन्म मृत्यु अनिवार्य है, जन्म मृत्यु के साथ क्लेश कष्ट अनिवार्य है। इतने सारे ऐश्वर्य सुख होने के बाद भी उनको रावण के द्वारा कष्ट प्राप्त हुआ है। त्रेता युग का समय था, उस समय राक्षस अलग देश में थे, देवता अलग देश में, अलग लोक में थे, राक्षस अलग लोक में थे। तो सत्ययुग में कहा गया है कि देवता लोग अलग लोक में रहते हैं, राक्षस लोग अलग लोक में रहते हैं। त्रेता युग में कहा गया है कि पृथ्वी लोक में ही भगवान के भक्त और भगवान के शत्रु रहते हैं। द्वापर में आएंगे तो एक परिवार में भाई भाइयों के बीच में राक्षस और देवता लोग मिलेंगे, पांडव और कौरव। और कलयुग में कहते हैं एक ही हृदय में देव और दानव साथ में रहते हैं, संघर्ष बना रहता है। साधना करने पर देवत्व का विकास होता है और पाप कृत्य करने पर अंदर के राक्षस का विकास होता है। तो हमें पाप कृत्य को छोड़कर साधना करके देवत्व का विकास करना है और फिर परम गति को प्राप्त करना है। खैर, कहने का तात्पर्य यह था कि देवताओं को भी इतना सारा भक्ति साधना करने पर भी कष्ट प्राप्त हो रहा है और होगा और होता रहेगा। तो कष्ट का निवारण करने के लिए वो क्या करते हैं? भगवान का सहारा लेते हैं। ये बड़ी विशेष बात है। देवताओं का ये स्वभाव है कि जब भी उनके जीवन में संकट आता है, भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहते हैं वो, लेकिन जब भी उनके जीवन में संकट आता है तो भगवान का सहारा लेते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं, उनके चरणों में अपने आप को लीन कर देते हैं, उन्हीं को पुकारते हैं, इसलिए भगवान उनको चाहते हैं। वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, वो भी भोग करते हैं अपने लोकों का, लेकिन भगवान उन पर प्रेम करते हैं क्योंकि वो कल्याणकारी जीव हैं, उपकारी जीव हैं, अन्य जीवों पर कल्याण करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, सद्गुण संपन्न हैं, भगवान के लिए अनुकूल हैं। इसलिए जब उन्होंने कष्ट का अनुभव किया तो भगवान स्वयं अवतरित हुए और उनको आश्वासन दिया। इसके बाद में हमारी कथा दोबारा पुत्र कामिष्टि यज्ञ स्थली पर जाती है, क्योंकि यहीं पर देवता लोग आकर चिंता व्यक्त कर रहे थे, वहां से हमने रावण का आख्यान शुरू किया था। फिर बड़े ही कुशलता से श्रृंगी ऋषि पुत्र कामिष्टि यज्ञ को संपन्न करते हैं। यज्ञ संपन्न होते ही पूर्णा होती होती है, बड़े ही धूमधाम से और शान से ऐश्वर्य के साथ भक्ति पूर्ण भाव से श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ मुनि के व्यवस्थापन में पुत्र कामिष्टि यज्ञ संपन्न करते हैं। और जैसे ही पूर्णा होती है, पूर्णा होती अर्पण की जाती है, उस समय यज्ञ कुंड से एक दैदिप्यमान प्रकाशमान श्रेष्ठ व्यक्ति उत्पन्न हो जाता है, मानो कोई देवता हो, भगवान की ओर से प्रकट होता है, यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता है। उसका शरीर बड़ा विशाल था, मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश उसके शरीर में हो। उसकी आंखों में ऐसी रौनक थी, ऐसा तेज था, शरीर में तेज था, आंखों में तेज था। उसके हाथ में एक चांदी के ढक्कन वाला सुवर्ण पात्र था, उसने काले और रक्त वर्ण के वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसके चेहरे पर स्मित हास्य था, शुभता थी, पवित्रता थी, आश्वासक भावना थी, आश्वासक मुद्रा थी। सब लोग उनको देख रहे थे, उसके हाथ में जो पात्र था उसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था, सबके मन में कुतूहल था क्या है उसके अंदर। उसके प्रकाश से सबकी आंखें चौंधिया गई। फिर तो उन्होंने कहा कि मैं प्रजापति का प्रतिनिधि हूं, जीव का विकास, जीव की वृद्धि करने का कार्य प्रजापति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे अनेक प्रजापति हैं, उसमें से एक दक्ष भी हैं। तो प्रजापति के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहां पर आया हूं, तो यहां पर अभी क्या होने वाला है, पुत्रों की प्राप्ति होने वाली है, वंश का विकास होने वाला है, किसी का जन्म होने वाला है। इसलिए जो पुरुष यज्ञ में प्रकट हुआ वो प्रजापति की ओर से वहां प्रकट हुआ और उसको देखकर देवता प्रसन्न हो गए। वो देवता जिसके हाथ में पात्र है यज्ञ से प्रकट हुआ है, वो कहता है कि आपका पुत्र कामेष्ट यज्ञ पूर्णतः से सफल हो गया है। उसके सफलता के फल स्वरूप मैं ये सुवर्ण पात्र लेकर आया हूं और दशरथ जी ये आपके लिए है। दशरथ के हाथ में सुपुर्द कर देता है। आपकी सर्वश्रेष्ठ पत्नियों को इसमें जो प्रसाद है, क्षीर प्रसाद है, उनको आप ग्रहण कराओ। ये बड़ी विशेष बात है। यज्ञ का प्रसाद जो है वो बड़ी शर्म से प्राप्त होता है। यज्ञ में जो भाग लेते हैं उनको सभी पापों का क्षालन करना पड़ता है। अश्वमेध के रूप में दशरथ ने और यज्ञ में भाग लेने वाले सभी ऋषि मुनियों ने अपने सर्व पाप कर्मों का क्षालन किया था, अश्व को शुद्ध किया था, पाप शुद्ध किए थे, उसके बाद शुद्ध और पवित्र मति से पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया था। उसका फल भी परम पवित्र था, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए उस क्षीर प्रसाद को भी श्रेष्ठ पत्नियों को ही देना था जो पाप से रहित थी। इसलिए उनको आदेश दिया गया कि आप में से जितनी श्रेष्ठ पत्नियां हैं उनको ये आप प्रसाद ग्रहण कराना है। उस खीर के पात्र को प्राप्त करते दशरथ जी आनंद विभोर हो जाते हैं। उन्हें अपने वृद्ध शरीर में तारुण्य का अनुभव होता है, उत्साह का अनुभव होता है, नव जीवन संजीवनी का अनुभव करते हैं वो अपने जीवन में, अपने शरीर में, और मन ही मन सोचते हैं नम्रता के वजह से, नम्रता के कारण, कि ऐसा पवित्र प्रसाद, दिव्य प्रसाद प्राप्त करने का मैं योग्य नहीं हूं। एक वैष्णव का लक्षण है। वैष्णव जब उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वो सोचता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। जब दुख प्राप्त होता है तो सोचता है कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, मेरे ही कारण ये हुआ है। आम व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं होता है, जब उसको दुख होता है तो वो दूसरों को दोष देता है कि आपके वजह से हुआ है। और जब कोई ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो सारा श्रेय खुद को लेता है। हम सब लोगों को वैष्णव बनना है, क्योंकि वैष्णव बनने से वास्तविकता का ज्ञान होता है कि ये सारा ऐश्वर्य जितना भी मेरे ऊपर दे दिया गया है वो भगवान की देन है, भगवान की कृपा है, क्योंकि वो हमको चाहते हैं, वो हमको दे रहे हैं, ये उनकी संपत्ति है, उन्हीं के लिए उसका उपयोग करना है। जब दुखों का अनुभव करता है तो ये सोचता है कि मैंने पूर्व जन्म के जो पाप किए हैं उसका परिणाम भोग रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को इसमें दोष देने का कोई कारण नहीं है। जिनके तरफ से, जिनके माध्यम से ये दुख प्राप्त हुआ है वो तो केवल देवताओं के हाथ के निमित्त हैं। किसी के हाथ से वो पापों का फल देना है तो इन्हीं के हाथ के निमित्त बनाकर दिए जा रहे हैं, वो तो केवल निमित्त है, उनके कारण ये नहीं हो रहा है। उंगली खुद की ओर दिखाते हैं। तो इतना बड़ा यज्ञ किया उन्होंने, एक साल भर अश्वमेध यज्ञ का प्रयास चलता रहा, उसके बाद में कई समय तक, बहुत लंबे समय तक पुत्र कामिष्ट यज्ञ हुआ, और आज वो सफल हुआ तो उसका श्रेय भी वो खुद पर नहीं ले रहे हैं। उसका फल उनके हक में था फिर भी वो अपने आप को योग्य नहीं समझ रहे हैं। भगवान इसी बात पर रीत जाते हैं। जब ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो हम उसको भगवान का मानते हैं, उनकी सेवा में लगाते हैं, तो भगवान उस व्यक्ति को और ऐश्वर्य देते हैं। जिस चीज का सदुपयोग होता है उस व्यक्ति को भगवान उस चीज को बारंबार देते रहते हैं, भर देते हैं हमारे भंडार, हमारी तिजोरी, हमारी झोली। तो इस प्रकार से जब आदेश प्राप्त होता है तो वो दिव्य पुरुष अदृश्य हो जाता है। बड़े प्रेम से वो घड़े को लेकर, स्वर्ण पात्र को लेकर भगवान अपनी पत्नी दशरथ अपने पत्नियों के पास जाते हैं महल में, जहां तीनों पत्नियां विराजमान है। सबके चेहरे पर आनंद फुला हुआ है, आनंद से विभोर है वो। तो वो उस पात्र के प्रसाद को दो भाग में विभाजित करते हैं, 50% दो हिस्से में कर देते हैं, और एक हिस्सा अपनी प्रथम पत्नी, ज्येष्ठ पत्नी कौशल्या को देते हैं। कौशल्या का वर्णन आया है कि उसे रीलेखा भी कहते हैं। रीलेखा उसका मतलब उसमें दैवी गुण विशेष रूप से प्रकाशित थे, और वो जहां जहां रहती थी, जहां जहां जाती थी, उन दैवी गुणों का प्रसार करती थी। उसके होने से दैवी गुण सबको प्राप्त हुआ करते थे, तो वो रीलेखा नाम से प्रसिद्ध थी, उसका रीलेखा स्वभाव था। और वो परम भगवान वासुदेव तत्व उसके अंदर प्रवेश करके वहां से भगवान प्रकट होने वाले थे, इसलिए आधा हिस्सा उसको दिया गया और तुरंत बड़े प्रेम से उसने आनंद से उसको प्राप्त किया। इससे प्रमाणित होता है कि 50% खीर का प्राशन करने से वासुदेव तत्व उसमें लीन हो गया, प्रवेशित हो गया। उसके बाद में जो बचा हुआ आधा हिस्सा था उसके दशरथ महाराज ने दो हिस्से किए, यानी कि एक चौथाई और एक चौथाई, और एक चौथाई उन्होंने सुमित्रा को दिया। सुमित्रा का वर्णन आता है कि वो श्रीलेखा थी, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका चरित्र श्रीलेखा था। उसका मतलब होता है कि वो समृद्धि का आगार थी और उसके आसपास जो भी व्यक्ति हुआ करते थे वो भी समृद्धि को प्राप्त करते थे। उसका अस्तित्व, उसका जीवन समृद्धि का प्रतीक था और समृद्धि का वितरक भी था, ऐसा उसका चरित्र था। उसने वो आधे का आधा हिस्सा जो प्राप्त किया उसको प्राशन नहीं किया, उसको वो पकड़े रही, नम्रता से हाथ में लेकर खड़ी हो गई। फिर जो बचा हुआ एक चौथाई, आधे का आधा हिस्सा था, उसका दशरथ महाराज ने दो हिस्से किए, यानी कि एक अष्टमांश और एक अष्टमांश। और वो एक अष्टमांश हिस्सा जो है उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी जो सबसे सुंदर थी सौंदर्य से उसको दिया। उसका स्वभाव था कीर्ति लेखा, यानी वो वैभव और कीर्ति का प्रतीक थी। जहां पर भी रहती थी, जहां पर भी जाती थी, सब जगह वैभव और कीर्ति का प्रकाश होता था। उसको दशरथ महाराज ने बड़े प्रेम से वो एक अष्टमांश हिस्सा दिया और उसने भी तुरंत उसको प्राशन किया। ये प्रमाण देता है कि भगवान का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंश था, संकर्षण तत्व था, वो कैकेयी में प्रवेश कर गया। फिर एक अष्टमांश हिस्सा बचा। दशरथ महाराज बहुत देर सोचते रहे कि इसको किसे दिया जाए। तब उनकी नजर सुमित्रा पर पड़ती है। कौशल्या ने अपना हिस्सा तुरंत प्राशन कर लिया, कैकेयी को दिया, उसने भी प्राशन कर लिया, लेकिन सुमित्रा सेवक भाव में, नम्र भाव में अपना हिस्सा लिए बैठी हुई, तो उसी के हाथ में वो उसको दे देते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो सेवा भाव में थी। कौशल्या और कैकेयी के प्रति भी उसका सेवा भाव था और उसके मन में यह भी भाव आया कि इनके उदर में वासुदेव और संकर्षण तत्व प्रवेश कर चुके हैं और मेरे उधर से जो प्रद्युम्न अनिरुद्ध तत्व प्रकट होंगे वो इन दोनों की सेवा में रहेंगे, इसलिए वो इंतजार कर रही थी, इसलिए उसको दूसरा भी हिस्सा दिया गया। यानी कि इसके हाथ में एक चौथाई हिस्सा एक है और एक अष्टमांश हिस्सा है। फिर उसने प्रार्थना किया, कौशल्या ने प्रार्थना किया कि भगवान हमारे घर में प्रवेश करें। कैकेयी ने प्रार्थना किया भगवान का संकर्षण बल अंश हमारे अंदर प्रवेश करें और विराजमान हो जाए। और सुमित्रा ने प्रार्थना किया इन दोनों की सेवा करने वाले पुत्र मेरे घर में प्रवेश कर जाएं। और फिर उसने दो, एक चौथाई और एक अष्टमांश पात्र जो है खीर प्राप्त किया। इससे पता चलता है कि सुमित्रा के जो गर्भ के बालक हैं वो इनके सेवक बनेंगे। यथावकाश तीनों पत्नियों ने अपने गर्भ में दिव्य तेजों को प्रकट होते हुए, प्रवेश करते हुए अनुभव किया। उनका सौंदर्य अमाप, अनंत मात्रा में बढ़ गया। वैसे ही वो बहुत सुंदर थी, उनकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं थी अयोध्या में, लेकिन उनका सौंदर्य अनंत मात्रा में बढ़ गया। उनका प्रकाश सब दिशाओं में फैल गया। देवता लोग ये तीनों गर्भवती स्त्रियों के इर्द गिर्द आकर प्रदक्षिणा करने लगे। देवता लोग नियमित रूप से प्रदक्षिणा करते हुए स्तोत्र गायन करने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे, पुरुषोक्त गायन करने लगे, अनंत वेदों की रुचाओं से भगवान का गौरव करने लगे। दृश्य रूप से, अदृश्य रूप में तीनों माताओं को, तीनों पत्नियों को हमेशा देवताओं के सानिध्य का अनुभव होने लगा। उनके इर्द गिर्द हमेशा पवित्र वाद्य बजते रहे, पवित्र श्लोकों का पठन होता रहा, देवता लोग आगे फूल वर्षा करते रहे, उनका कक्ष प्रकाश से सब जगह प्रकाशित हो गया, दिव्य प्रकाश उनके कक्षों में फैल गया। 12 महीनों तक तीनों पत्नियों ने अपने गर्भ में इन जीवों को आसरा दिया, उनकी परवरिश की और हर महीने में हर महीने में उनके सौंदर्य की वृद्धि हुई, उनके आनंद की वृद्धि हुई, उनके द्वारा बाकी सब लोगों के आनंद की वृद्धि हुई। दशरथ महाराज के आनंद का कोई पारावार ही नहीं था, कोई सीमा ही नहीं थी। दशरथ महाराज ने अनंत आनंद का अनुभव किया, क्योंकि कई सालों तक वृद्धावस्था को प्राप्त होने तक दशरथ महाराज ने पुत्र न होने का दुख सहन किया था। जैसे हमने पहले भी कहा है, परशुराम जी ने आक्रमण किया, उसका भय पैदा हुआ, उन्होंने 350 अधिक विवाह किए, उन भय से अधिक उनको अनुभव होता था पुत्र न होने का दुख। और आज इतने प्रयास के बाद, संतों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अश्वमेध यज्ञ और पुत्र कामिष्ट यज्ञ संपन्न हुए, कितने आनंद की बात है। जो नामुमकिन लग रहा था, जिस राज्य को वंश नहीं होना था, ऐसे अनुभूति हो रही थी, वो आज होते हुए नजर आ रहा है। होगा, निश्चित रूप से होगा, हमारे आंगन में पुत्र खिलेंगे, पुत्रों के चरण कमल खिलेंगे, हमारे आंगन में बच्चों के छुम छुम घुंघरू बजेंगे। इस भाव से पूरी अयोध्या नगरी प्रफुल्लित हो गई थी। सभी लोग, जितने प्रजा थे, जैसे हमने पहले कहा था कि सभी प्रजा जो भगवान के लिए भक्त के रूप में अपने जीवन को बिता रहे थे और राजा के लिए समर्पित थे, हर प्रकार का त्याग करने में हमेशा उत्सुक रहते थे और राजा का दुख अपना दुख मानते थे। जब तक राजा दुखी थे, प्रजा भी दुख का अनुभव करती थी। क्या करें, हमारे राजा के लिए ये भाव था। और आज सब प्रजा को पता चल गया था कि हमारी राजमाताएं गर्भवती हैं, हमारी राजमाता भगवान को जन्म देने वाली है। विष्णु तत्व जो है वो हमारे राजमाताओं के गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। हमारे अयोध्या नगरी में साक्षात भगवान के विष्णु तत्वों के चरण कमल पुनीत करने वाले हैं। हम सब लोगों का भाग्य के क्या वर्णन करें, हमने ऐसा क्या पुण्य किया था कि हमारे राज्य में हमारी राजमाताओं के गर्भ से भगवान स्वयं प्रकट होने वाले हैं। ये भाव था अयोध्या में। ऐसा कहते हैं कि आनंद वाली घटना जब होती है तो आनंद वाली घटना होने के पहले ही आनंद का अनुभव होने लगता है। अंग्रेजी में कहा गया है कि घटना होने के पहले उसका जो इंतजार करते हैं, उसकी जो तैयारी करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आनंद होता है। और भौतिक दुनिया में उल्टा होता है। भौतिक दुनिया में कुछ आनंद की घटना होने तक ही आनंद मिलता है, और आनंद की घटना जब होती है तो दुख का आरंभ हो जाता है। लेकिन भगवान के विषय में यह सत्य नहीं है। भगवान के विषय में सत्य यह है कि भगवान आने के पहले उनके विचार से भी आनंद देते हैं, जब आते हैं तो आनंद को द्विगुणित करते हैं, अनंत गुणित कर देते हैं, और एक एक लीला करने से आनंद को अनंत गुना बढ़ा देते हैं। अभी अयोध्या के आंगन में भगवान के चार चांद खिलने वाले हैं। आने वाले सत्रों में हम भगवान के जन्म का वर्णन करेंगे। लेकिन समझना जरूरी है कि हर एक मनुष्य के जीवन में, भौतिक दुनिया में, दुखों का सागर बड़ा रहता है, पड़ा रहता है, बना रहता है। केवल भगवान रूपी चंद्र जब वहां पर उदित होता है, तब उसकी शीतल किरणों से दुखों का नाश होता है और आनंद का अनुभव होता है। इस भौतिक दुनिया में भगवान के अलावा कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें आनंद का अनुभव दे सकती है। सुख और दुख मिल सकता है। सुख की व्याख्या है दुख का अभाव, और दुख का मतलब है सारे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कष्ट प्राप्त होना। अनेक प्रकार के कष्टों से हम पीड़ित हैं, लेकिन जब भगवान का सहारा लेते हैं तब हम शांत हो जाते हैं। उस शांति के साथ में आनंद का अनुभव होता है। इसलिए जब भगवान का अनुष्ठान किया गया, भगवान का अनुसंधान किया गया, भगवान को पुकारा गया, तो भगवान आ रहे हैं। आइए अगले सत्र में हम इन चार चांद कैसे प्रकट हुए अयोध्या के दशरथ के आंगन में, और कैसा आनंद हुआ, उसका वर्णन सुनेंगे।